उर्वशी में सांस्कृतिक तत्व। सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। इन दोनों में तात्विक अंतर अवश्य है। यदि सभ्यता शरीर है तो संस्कृति उसमें निवास करने वाली आत्मा का प्रतिरूप है। पाणिनि के अनुसार सभा में साधु आचरण करने वाले को सभ्य कहा जाता है। सभ्यता सभ्य की भाववाचक संज्ञा है। संस्कृति का अर्थ सम्यक उन्नति अथवा क्रिया। इस प्रकार सभ्यता की अपेक्षा संस्कृति का क्षेत्र अधिक व्यापक है। समाज में ठीक ढंग से उठने बैठने रहने तथा बात करने को सभ्यता कहते हैं। संस्कृति का क्षेत्र इससे बहुत अधिक व्यापक है। यदि एक ही वाक्य में इन दोनों की परिभाषा की जाए तो मनुष्य की भौतिक क्षेत्र की उन्नति सभ्यता एवं मानसिक क्षेत्र की प्रगति संस्कृति कहलाती है। दूसरे शब्दों में संस्कृति वह सूक्ष्म भावनात्मक तत्व है जो हृदय की प्रेरणा से बाह्य आचार में प्रस्फुटित होकर सूक्ष्मता के ही अधिक निकट रहता है, और सभ्यता वह तत्व है जो हृदय की अपेक्षा बुद्धि से अधिक संबद्ध रखता है। उसकी जड़ें सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूल में अधिक गहरी उतरी हुई होती हैं, अर्थात वह भौतिकता की ओर अधिक झुकी हुई होती हैं। इसीलिए संस्कृति की अपेक्षा सभ्यता अधिक परिवर्तनशील है। लोक जीवन और संस्कृति। संस्कृति के वास्तविक दर्शन हमें लोक जीवन में ही होते हैं। आधुनिक सभ्यता के चोले में रंगे हुए लोग, जिन्हें रूढ़ियाँ तथा अंधविश्वास कहते हैं, असली अर्थ में वही सच्ची संस्कृति है। इन रूढ़ियों एवं परंपराओं के पीछे जो एक महान सत्य एवं वैज्ञानिकता छिपी हुई थी, उसे तो आज का सभ्य कहलाने वाला पुरुष भूल गया है और बिना सोचे समझे उसकी निंदा करता है। उदाहरण के लिए, हमारे देश में शव को चिता में जलाने से पूर्व जल में 3 डुबकियाँ लगवाते हैं। लोग तो इसे अंधविश्वास कह देते हैं, मगर असलियत यह है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शव में प्राणवायु शेष रहता है जो जल के स्पर्श से जागृत हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जीव हत्या से बच जाता है। इसी प्रकार गांव में स्त्रियां विवाह शादी के अवसर पर अनेक गीत गाती हैं तथा नवरात्रों के अवसर पर सांझी आदि रखती हैं, जिनसे देखा जाए तो साहित्य एवं चित्रकला आदि का काफ़ी विकास होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन यथार्थ संस्कृति का रूप ग्रामों में ही मिलता है। साहित्य और संस्कृति। कवि अथवा साहित्यकार बेतार के तार के ग्राहक यंत्र के समान है। जिस प्रकार ग्राहक यंत्र संपूर्ण वायुमंडल में से अपने मतलब की सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार कवि भी अपने समय के वायुमंडल को अपने सूक्ष्म दृष्टि से देखता है और उसे अपने दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। सच्चा कवि जीवन की वास्तविकताओं को जड़ से पकड़ता है और कल्पना का आधार देकर उसे मौलिकता प्रदान करता है। वैसे संस्कृति का सच्चा स्वरूप तो लोक कवि की रचना ही में मिलेगा, लेकिन जीवन के गूढ़ मानसिक सत्यों को जानने वाला कवि भी अपने काव्य में वर्णित आख्यान के आधार पर उस देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नैतिक परिस्थितियों का चित्रांकन करता है। वेद पुराण कालीन संस्कृति। चूंकि दिनकर जी को उर्वशी कृति के आधार पर कृति के आख्यान का मूलाधार वेद पुराणकालीन संस्कृति है, अतः तत्कालीन संस्कृति की पृष्ठभूमि को जान लेना आवश्यक है, जिससे काव्य में संस्कृति के मूल तथ्यों को सरलता में से घटाया जा सके। पहला, सामाजिक परिस्थितियां। वैदिक युग में समाज का आधार परिवार था। दो वर्ण थे, आर्य और दास। ऋषियों में आश्रम व्यवस्था थी। मनुष्य के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन 4 आश्रमों में बांट रखा था। महाभारत के समय वर्ण व्यवस्था तो थी, किंतु जात पात नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कर्मानुसार माने जाते थे, जन्मानुसार नहीं। उस समय समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ब्राह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष, दैव, आसुर, गांधर्व और पैशाच विवाह। वैदिक युग में स्त्रियों का बड़ा मान तथा आदर था, किंतु पौराणिक युग में स्त्रियों की स्थिति समाज में गिर रही थी। वे पुरुषों की संपत्ति समझी जाने लगी थी। दूसरा, धार्मिक परिस्थितियाँ। वैदिक काल में ब्रह्म शक्ति की पूजा यज्ञों में आहुति डालकर की जाती थी। एक ही ईश्वर का रूप प्रकृति के नाना शक्तियों में अग्नि, सूर्य, वायु, जल, आकाश तथा पृथ्वी में विभिन्न रूपों में चमक रहा है। इंद्र, अग्नि, वरुण तथा सूर्य की स्तुति होती थी। महाकाव्य युग में धर्म में बड़ा अंतर आ गया। देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। पंच यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ तथा भूत यज्ञ होते थे। राजा लोग राजसूय और अश्वमेध तथा पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास था। पौराणिक युग में गौ, ब्राह्मण तथा ऋषियों की प्रतिष्ठा, वेद की प्रामाणिकता, प्रलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बहुत बल दिया गया था। तीसरा, राजनीतिक परिस्थितियां। वैदिक युग में शासन व्यवस्था बहुत उन्नत थी। आर्य जाति कई समूहों में बटी हुई थी। उनका मुखिया राजा होता था। यह प्रायः वंश क्रमागत होता था, किंतु उस समय प्रत्येक राजा को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह प्रजा की भलीभांति पालन करेगा। प्रजा तथा राजा के नियंत्रण के लिए एक समिति होती थी। राज्य के मुख्य अधिकारी पुरोहित, सेनापति तथा ग्रामीण होते थे। महाकाव्य युग में राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजा वंश क्रमागत होता था। ब्राह्मण एवं ऋषियों का राजा आदर करता था। आदर्श राजा का यह कर्तव्य था कि वह निर्बलों पर अत्याचार न करे, सीमा का अतिक्रमण न करे और मन, क्रम तथा वचन से प्रजा के हित की कामना करे। पौराणिक युग में राजतंत्र का पूर्ण विकास हो गया था। इसके अतिरिक्त तत्कालीन पौराणिक कथाओं, उत्सवों, विभिन्न संस्कारों, नामकरण, गोचारण, यज्ञ, विप्र पूजा, याचकों को दान आदि, श्रृंगार तथा वेशभूषा आदि का भी संस्कृति में प्रमुख महत्व है। उर्वशी और संस्कृति। अब देखना यह है कि कवि ने उर्वशी में वेद पुराण कालीन संस्कृति का कितना निर्वाह किया। सामाजिक परिस्थितियां। उर्वशी में सामाजिक परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में आश्रम व्यवस्था थी। 8 प्रकार के विवाहों के में उस समय ब्राह्म विवाह, पुरुर्वा का औष्णरी से विवाह, गांधर्व तथा राक्षस विवाह प्रचलित थे। पुरुर्वा का गंध मादन पर्वत पर उर्वशी के साथ जाना और परस्पर प्रेम में आबद्ध होकर विवाह करना गांधर्व विवाह है। लेकिन उर्वशी के मुख से कवि ने इस बात का भी संकेत किया है कि उस समय राक्षस विवाह भी होता था, जिसके अनुसार जबरदस्ती कन्या का अपहरण कर लिया जाता था। यथा जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमी पुरुष बलशाली रण से लाते जीत या कि बल सहित हरण करते हैं। हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयश था। औष्णरी के माध्यम से कवि ने तत्कालीन नारी समाज की दयनीय स्थिति का चित्र खींचा। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। दुख दर्द जत लाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं, नारी उठे जो हुक मन में जीव पर लाओ नहीं। रुदन छोड़ विधने सिरजा क्या और भाग्य नारी का। नारी क्रिया नहीं वह केवल क्षमा शांति करुणा है। हम हो जाती हैं कृतार्थ अपने अधिकार गंवा कर। इसके अतिरिक्त तत्कालीन समाज में विभिन्न संस्कार थे जिनका तत्कालीन समाज बड़ी श्रद्धा से पालन करता था। यथा शिशु का गोचारण, फिर कुछ दिन में और तनिक बढ़कर प्रतिदिन जाएगा होम धेनुओं को लेकर गोचर अनुकूल विपिन में। वेद पाठ, फिर पवित्र होकर महर्षि के साथ यज्ञ वेदी पर बैठ हमारा लाल मंत्र पढ़ पढ़ कर हवन करेगा। विप्र पूजा तथा मान, इला पुत्र मैं पुरुपदों में नमस्कार करता। याचकों को दान, द्वार खोल दो कोष भवन का, कह दो पौरजनों से जितना भी चाहें सुवर्ण आकर ले जा सकते हैं। जादू टोने के रूप में मंगल कलश को शुभदायक मानना, या कोई रूपसी उन्मना बैठी जाग रही है, सिर की ओर चंद्रमय मंगल निद्रा कलश सजाकर। धार्मिक परिस्थितियां। उर्वशी में राजा, प्रजा तथा ऋषि ब्राह्मणों की यज्ञों के प्रति श्रद्धा तथा प्रकृति को संपूर्ण शक्ति संपन्न बताया गया है। पुरुर्वा द्वारा पुत्रेक्षा के लिए नैमिषेय यज्ञ करना इस बात का प्रमाण है। एक वर्ष पर्यंत गंधमादन पर हम विचरेंगे, प्रत्यागत हो नैमिषेय नामक शुभ यज्ञ करेंगे। प्रकृति में ईश्वर की अदम्य शक्ति का दर्शन करना हो तो तीसरे सर्ग को कहीं से पढ़ ले देखिए, उसका ठोस प्रमाण मिल जाएगा। वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण तथा सूर्य की स्तुति होती थी। कवि ने इसका ही पूर्ण निर्वाह किया। कुशल करें अर्यमा मरुदगण उतर व्योम मंडल से, अभिषुत सोम ग्रहण करने को आते रहें भुवन में। वरुण रहे प्रज्वलित निरंतर आवहनीय अजल को, रहे दृष्टि पर हम पर अभिष्ट वर्षी अमोघ मघवा की। अभिष्ट प्रसंग न आने के कारण कवि ने पंच यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ आदि का उल्लेख नहीं किया है। हाँ, स्थान स्थान पर पुनर्जन्म की महत्ता, गो ब्राह्मण की प्रतिष्ठा आदि का वर्णन किया है। प्रलोकवाद या पुनर्जन्मवाद, तुम्हें खोजता फिरा तैर कर बारम्बार मरण को, जन्मों के अनेक कुंजों वीथियों प्रार्थनाओं में। मेरी ही थी तपंज से फूलों के कुंजहन में, जन्म जन्म के तुम आलिंगन से हरती आई हो। दूसरा, नीचे 4 पंक्तियों में गांवों के प्रति सेवा भाव तथा ब्राह्मणों एवं ऋषियों के प्रति सम्मान का लाक्षणिक भाव वर्णित है। फिर कुछ दिन में और तनिक बढ़कर प्रतिदिन जाएगा होम धेनुओं को लेकर गोचर अनुकूल विपिन में, और सांझ के समय चराकर उन्हें लौट आएगा सिर पर बोझ लिए कुष्ठदर्भ और समिधाका। राजनीतिक परिस्थितियां। वैदिक युगीन शासन व्यवस्था की भांति पुरुर्वा की शासन व्यवस्था बड़ी उन्नत दिखलाई गई है। वेद पुराण कालीन राजनीतिक गतिविधि का उर्वशी में चित्रण देखिए। राजा वंश क्रमागत होता था। पुत्रहीन होने पर राजा की यह चिंता इस तत्व पर पूर्णतः प्रकाश डालती है। पुत्र पुत्र अपने गृह में क्या दीपक नहीं जलेगा, देव दिव्य अयल वंश क्या आगे नहीं चलेगा। दूसरा, राजा प्रजा के हित का अहर्निश आकांक्षी रहता था। वह न्यायप्रिय तथा दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करने वाला होता था। उर्वशी के मुख से आयु के विषय में कहलाई गई निम्न पंक्तियां देखिए। जब होगा यह भूप, प्रचुर धन धन्यवती भू होगी, रोग शोक परिताप पाप वसधा के घट जाएंगे। दूसरे देश की सीमाओं के अनतिक्रमण के संबंध में पुरुरवा के मुख से कही गई निम्न पंक्तियों को देखिए। नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, न तो किया संघर्ष कही पर की वसुधा हरने को। राज्य के मुख्य अधिकारी सेनापति पुरोहित ग्रामणी होते थे। उर्वशी में इन तीनों की संगति पांचवें सर्ग में दिखलाई गई है। सभी सभा पद में के रूप में ग्रामीणी पुरोहित विश्वमना तथा महामात्य इस वर्ग सर्ग में विस्तृत परिचय दिया गया। राजा ऋषि तथा ब्राह्मण का सम्मान करता था। पुण्योदय के बिना संत कब मिलते हैं राजा को, इला पुत्र मैं पुरु पदों में नमस्कार करता हूँ। सामाजिक राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का अतिरिक्त कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो तत्कालीन संस्कृति का बोध करवाते हैं, यथा पौराणिक कथाएं, मनोरंजन के साधन, श्रृंगार तथा वेशभूषा। पौराणिक कथाएं, उर्वशी में 10 के करीब पौराणिक कथाओं का आलेख है। पहला पुरुरवा उर्वशी की मूल कथा, दूसरा ऋषि चेवन की कथा, तीसरा समुद्र मंथन की कथा, चौथा कार्तिकेय की कथा, पांचवा भरत श्राप की कथा, छठा अश्विनी कुमारों की कथा, सातवा पुलोमा की कथा, आठवा तारा की कथा आदि। ख मनोरंजन के साधन, पौराणिक काल तक आकर नारी पुरुष के मनोरंजन का मुख्य साधन बन गया था। इसके अतिरिक्त विविध वाद्य नृत्य जल क्रीड़ा नौका विहार आखेट तथा झूलना उस युग के मुख्य मनोरंजन के साधन थे। उर्वशी में यत्र तत्र इन सब का उल्लेख है। जल क्रीड़ा नौका विहार तथा झूला झूलने के एक एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं। सजल चांदनी की सुमंद लहरों में तैर नहाओ रे, झूलो गगन हिंडोर पर किरणों के तार चढ़ाओ रे, फूलों की नाव बहाओ रे, यह रात्र पहली आई। ग श्रृंगार तथा वेशभूषा, उर्वशी में नारी पुरुष के श्रृंगार का मुख्य साधन पुष्प ही बताया है। आज सांझ को ही उसको फूलों से खूब सजाकर सुरपुर से बाहर ले आई सबकी आंख बचाकर। रात्रि के चित्रण में नारी की वेशभूषा पर कवि ने एक स्थान पर अपनी कलम चलाई है। सम्राज्ञी विभ्राट कभी जाते इसको देखा है, समारोह प्रांगण में पहने हुए दुकुल तिमिर का, नक्षत्रों से खचित कुल की झालने विवाह की, गुथे हुए चकुर में सुरभित दाम श्वेत फूलों के। इस प्रकार सारांश में यह कहा जा सकता है कि संस्कृति तत्व की दृष्टि से उर्वशी पर्याप्त रूप में उर्वरा है। उर्वशी का कवि संस्कृति के इतिहास का पूर्ण ज्ञाता है। यही कारण है कि हमें संस्कृति संबंधी विरोधाभास कहीं पर देखने को नहीं मिलता। कवि ने अपने मानस को उर्वशीकालीन संस्कृति में पगाकर ही काव्य का प्रणयन किया है। अतः कहा जा सकता है कि उर्वशी में संस्कृति तत्व पूर्ण रूप में विद्यमान है। समाप्त।